मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। AFEIS के आज 22 जनवरी 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं राजधानियों का विकेंद्रीयकरण इस विषय पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए इससे पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। और आज की भी जो खबरें हैं मूलतः अखबारों पर आधारित खबरें हैं। अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक बहुत अच्छी बात कही है और ये बात संविधान से संबंधित है और विधानसभाओं के स्पीकर से जुड़ी हुई है। इनफैक्ट इसे आप हमारे लोकसभा के स्पीकर से भी जोड़कर देख सकते हैं। आपको मालूम है कि चाहे वो हमारे लोकसभा हो या हमारी विधानसभाएं हो, उनके अध्यक्ष होते हैं, इंग्लिश में उन्हें कहते हैं स्पीकर, हिंदी में हम उन्हें अध्यक्ष के नाम से जानते हैं, और वो पूरे के पूरे हाउस का संचालन करते हैं। वो हाउस के आप यूं कह लीजिए कि प्रथम व्यक्ति हैं। अगर वो लोकसभा या विधानसभा में है तो वो सर्वे सर्वा है, क्योंकि वे उसके अध्यक्ष हैं और वहां जो भी कार्यवाही होती है वो अध्यक्ष की अनुमति से ही होती है। और अध्यक्ष को ही यह अधिकार है कि वह किसी भी सदस्य को सदन से बाहर कर सके, कुछ दिनों के लिए बर्खास्त कर सके, और कुछ मामलों में वह सदस्यों की सदस्यता को ही समाप्त कर सके दल बदल कानून के अंतर्गत। इसके बारे में आपको डेफिनेटली जानकारी होगी। पिछले कुछ समय से आप महसूस कर रहे होंगे कि दल बदल कानून के तहत जो सदस्यों को योग्य और अयोग्य घोषित किया जा रहा है वे मामले फिर सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को उसके बारे में कुछ बातें कहनी पड़ती हैं, कुछ निर्देश देने पड़ते हैं, कुछ फैसले करने पड़ते हैं। अभी भी एक मामला मणिपुर के मामले में हुआ और उसके बारे में फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है वो मुझे लगता है कि सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, लोकसभा पर भी आप इसे लागू कर सकते हैं, वे मूलतः किसी पार्टी के सदस्य होते हैं, है ना, वो पार्टी के ही बैनर पर बकायदे सांसद या एमएलए बनकर सदन में पहुंचते हैं, यानी कि वो पार्टी के ही सदस्य हैं, राइट। और पार्टी के सदस्य के बाद फिर उनका चुनाव होता है, वो स्पीकर बना दिए जाते हैं और लोकसभा हो या विधानसभा हो, जिस पार्टी का बहुमत होगा सीधी सी बात है कि उसी पार्टी का ही व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा। तो अब यहां जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि होता क्या है कि जब किसी सदन के सदस्य की योग्यता अयोग्यता की बात आती है तो स्पीकर को निर्णय लेना पड़ता है, और चूंकि यह स्पीकर किसी राजनीतिक दल का सदस्य होता है इसीलिए उसके निर्णय पर उस राजनीतिक दल के हितों का प्रभाव बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, यानी कि वो तटस्थ नहीं होता है। तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। देखिए, तो संविधान की बात है, इस पर सुप्रीम कोर्ट तो शायद ही सीधे सीधे कुछ कह सके, लेकिन वो अपनी बात कह रहा है कि इस मुद्दे पर विचार किया जाना चाहिए। और उसने बल्कि एक सजेशन भी दिया है, और सजेशन ये दिया है कि बेहतर हो कि इसके लिए एक स्वतंत्र निकाय बनाया जाए, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी या रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाए, एक संस्था का गठन किया जाए और उसमें जो है जजेस हो, रिटायर्ड जज हो, और वे फिर इस तरह के मामलों को देखें। मतलब पूरे देश में चाहे विधानसभा या लोकसभा कहीं का भी अगर मामला इस तरह का होता है तो यह जो निकाय है वह इस पर विचार करे। यह ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट ने दी है और मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से बन जाता है। दोस्तों इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और भी बहुत अच्छी बात कही है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो माँ बाप का प्यार है, माता पिता का जो प्यार है, वो बच्चे का मानवाधिकार है और यह उसे मिलना ही चाहिए। एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था जिसमें एक छोटा सा बच्चा है, ढाई तीन साल का, ढाई साल की बच्ची है, समझिए कि माता पिता में तलाक होने वाला है, तलाक हो रहा है, और इस बच्ची के लिए दोनों माता पिता आपस में दावा कर रहे हैं कि मेरे पास रहेगी, मेरे पास रहेगी। यानी ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो उसने कहा कि ये जो बच्चा है कोई निर्जीव वस्तु नहीं है कि जिसे माता पिता एक दूसरे के पाले में उछालें कि तुम पालो, मैं पालूंगा, मैं पालूंगा। यह कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, और माता पिता का प्यार मिले यह उसका मानवाधिकार है, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि इतना छोटा बच्चा दोनों से संपर्क रख सके, माता से भी और पिता से भी। अगर व्यक्तिगत तौर पर संपर्क रखना संभव न हो तो टेलीफोन से रख सकता है, ईमेल से रख सकता है, इंटरनेट से रख सकता है, व्हाट्सएप से रख सकता है, वीडियो कॉलिंग से रख सकता है, लेकिन दोनों से संपर्क उसका बना होना चाहिए, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। मित्रों, आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में वीकर सेक्शन शब्द लिखा हुआ है, वाट आप एग्जामिनेशन में प्रश्न भी पूछे जाते हैं और सिलेबस में आपको लिखा हुआ भी मिलेगा वीकर सेक्शन। और याद रखिए कि जो बच्चा है वो वीकर सेक्शन के अंतर्गत ही आता है और यहाँ हम बच्चे के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ये लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है और मैं चाहूँगा कि इसे आप नोट कर लें और बच्चों के ऊपर यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो कोशिश करें कि इस टिप्पणी को आप शामिल कर सकें। मित्रों एक शब्द है सारंग, आपको शायद अखबारों में पढ़ने को मिला होगा। सारंग जबलपुर में जो फैक्ट्री है हमारी इस तरह की सामग्री युद्धक सामग्री बनाने की जो फैक्ट्री, तो सारंग ने एक तोप निर्मित की है, उसका सारंग नामक तोप निर्मित की गई है और ये बहुत ही आप यूं कह लीजिए कि मॉडर्न गन है, तोप है। और इसका जो सारंग नाम रखा गया है ये कृष्ण के धनुष के नाम पर रखा गया। कृष्ण का जो धनुष था वह था सारंग, उसका नाम था सारंग और ये 39 किलोमीटर दूर तक मार कर सकता है। तो बस इतना ध्यान रखिए आप सारंग। फ्रेंड्स अभी दावोस में सम्मेलन चल रहा है, इसके बारे में मैं लगातार आप सबसे बातें करता आ रहा हूं। इसमें एक जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसकी कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और ये रिपोर्ट भी जो पेश की है वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का ये संगठन है और इसके बारे में आपको अपने सिलेबस के हिसाब से भी जानना चाहिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इसने दो तीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें की हैं जो आपके आगे भी काम आएंगी। पहला तो ये है कि विश्व में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। अब देखिए इससे पहले भी जो रिपोर्ट आई है इसी दावोस में उसने कहा कि आर्थिक मंदी का दौर है, आर्थिक सुस्ती चल रही है और भारत की आर्थिक सुस्ती का प्रभाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। तो जब आर्थिक सुस्ती होगी तो सीधी सी बात है कि बेरोजगारी भी बढ़ेगी और उसका कहना है कि जो वैश्विक बेरोजगारी है वो 5.4% है। ये आपको नोट कर लेना चाहिए, 5.4% टोटल संख्या उसने 47 करोड़ बताई है। लेकिन जो इससे भी महत्वपूर्ण बात है जो उसने कही है वो ये है कि ठीक है चलिए बेरोजगारी बढ़ रही है लेकिन जो इनकम है लोगों की वह भी डिफरेंट हो रही है और उसका कारण है कि काम देने के मामले में बकायदे भेदभाव किया जाता है, चाहे वो जेंडर के आधार पर भेदभाव हो। भारत में तो भेदभाव के और भी बहुत दूसरे रूप होते हैं। तो ये जो भेदभाव है और दूसरा यह है कि कुछ लोगों को अवसर ही नहीं दिए जाते या उन्हें टरकाया जाता है, तो इसके कारण ये जो बेरोजगारी का स्वरूप है उसने और गंभीर रूप ले लिया है। और आज दुनिया भर में जो हम ज़्यादातर विरोध देख रहे हैं, विरोध का प्रदर्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि अच्छे जॉब लोगों को नहीं मिल रहे हैं। ये दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और जो तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि दुनिया में जो भी वर्क फोर्स है यानी कि काम करने वाले लोग हैं उसके 60% लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं, असंगठित क्षेत्र में। देखिए जब आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो क्या है कि न तो आपको सही वेतन मिलेगा और न ही कोई सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। 60% पूरी दुनिया में और भारत में तो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का जो प्रतिशत है 92-93% के आसपास है। सोच करके देखिए 92-93% हमारे यहाँ के लोग असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनको नौकरी की सुरक्षा नहीं है, कभी भी निकाल दिए जाएंगे, वेतन बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे, सोशल सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो सीधी सी बात है कि इनमें और भी ज्यादा आक्रोश होगा। दोस्तों ये थी कुछ खबरों के बारे में। अब आता हूं मैं आज के मुख्य विषय पर और जो मेरा मुख्य विषय है वो बेसिकली आंध्र प्रदेश में जो अभी एक विधेयक पारित हुआ है उसको लेकर है। आप लोगों ने अखबार में इससे पहले पढ़ा होगा कि आंध्र प्रदेश सरकार ने एक विधेयक पारित किया है और उस विधेयक में ये है कि अब आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होंगी। ये आपके ध्यान में होनी चाहिए कि ये 3 राजधानियां कौन कौन सी हैं। अमरावती में विधायी राजधानी होगी, आप विधायी राजधानी का मतलब है आप कह लीजिए कि लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती में। विशाखापट्टनम में कार्यकारी राजधानी होगी, एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगा। और जो कुरनूल है वहां न्यायिक राजधानी होगी। फ्रेंड्स ये जो 3 राजधानियां हैं इनफैक्ट इसमें जो सही राजधानी जिसे आप व्यावहारिक दृष्टि से इनफैक्ट रियल कैपिटल ऑफ द स्टेट कहेंगे वह होगा विशाखापट्टनम, क्योंकि विशाखापट्टनम में ही सरकार के जितने भी विभाग के प्रमुख होते हैं उनके कार्यालय होंगे, राजभवन होंगे, मुख्यमंत्री का कार्यालय होगा, सब कुछ विशाखापट्टनम में होगा। यानी कि सही मायने में जो राजधानी होगी वो विशाखापट्टनम होगी। जो कुर्नूल शहर के बारे में बात हुई वह न्यायिक राजधानी इस मायने में होगी कि राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो कुर्नूल में होगा, और साथ ही साथ जो दूसरे जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वे कुर्नूल शहर में होंगे। ठीक है, जो अमरावती है वो विधायी राजधानी इस मायने में होगी कि वहां आपका आपकी विधानसभा होगी। ये बात उन्होंने कही है। और जो मुख्यमंत्री ने कहा है इसके पीछे दो कारण है। पहला तो यह है विकेंद्रीकरण, कि जो शक्ति है उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यानी कि एक जगह विधानसभा है, दूसरी जगह सरकारी दफ्तर है महत्वपूर्ण, और तीसरी जगह न्यायपालिका है। तो ये तीनों क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण हो गया, वो अलग अलग जगह पर है। और इसका एक दूसरा रीजन उन्होंने ये दिया है कि इससे जो वो क्षेत्र है उनका उचित रूप से विकास हो सकेगा, यह बात उन्होंने कही है। इस संदर्भ में दो बातें आपको खासकर बताना चाहूंगा समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए। पहली बात कि बिल्कुल यही पैटर्न साउथ अफ्रीका का है, दक्षिण अफ्रीका ने बिल्कुल इसी पैटर्न पर किया, यू कह लीजिए दक्षिण अफ्रीका ने तो पहले ही किया हुआ है, उसी पैटर्न पर आंध्र प्रदेश कर रहा है। वहां भी तीन राजधानियां हैं, प्रिटोरिया वहां की एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, ब्लोमफ्रंटेन वहां की जुडिशियल कैपिटल है, और कैपटाउन वहां की लेजिस्लेटिव कैपिटल है। ये शायद आपको मालूम होगा, और नहीं है तो होना चाहिए, क्योंकि जब इस मान लीजिए कि इस पर कोई प्रश्न आता है तो हो सकता है कि इस तरह की बातें कुछ पूछ भी ली जाए प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से। अब आप देखिए कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। दोस्तों अभी वहां सत्ता परिवर्तन हुआ, इससे पहले तेलुगु देशम सत्ता में थी और उसने बकायदे अमरावती को वहां की राजधानी घोषित किया हुआ था और बकायदे उसका डेवलपमेंट भी होना शुरू हो गया था। अमरावती बहुत डेवलपमेंट भी वहां का हो चुका है, और अमरावती के डेवलपमेंट के लिए बकायदे वर्ल्ड बैंक से लोन लिया गया है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से लोन मिला है, और सिंगापुर कंसोर्टियम से भी लोन मिला है। जैसे ही सरकार ने निर्णय लिया है वो पूरा का पूरा अब इन लोगों ने लोन देना, अपने आप को विड्रा कर लिया, क्यों लोन देंगे? सोच करके देखिए कि वहां जो भी डेवलपमेंट हुआ है अब उसका क्या होगा, व्यावहारिक स्तर की बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब सरकार इस तरह के निर्णय लेती, यानी कि जैसे ही पार्टियां बदलती हैं और इतने बड़े बड़े निर्णय भी जब बदल जाते हैं तो इसका प्रभाव व्यावसायिक वर्ग पर क्या होगा? सीधी सी बात है कि सरकार इतने ज्यादा इतने बड़े बड़े निर्णयों को बदल देती है तो आज जो सरकार कह रही है पता नहीं 5 साल के बाद वह निर्णय रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो इससे जो इन्वेस्टमेंट भी स्टेट में होना है वो बहुत ज्यादा दुष्प्रभावित होता है। और जो तीसरी बात है जिसके लिए आंध्र प्रदेश की तारीफ भी हो रही थी वो ये कि जब अमरावती को कैपिटल घोषित करने की बात आई तो इसके लिए सरकार ने उस प्रोजेक्ट के तहत 33,000 एकड़ जमीन 33,000 एकड़ जमीन किसानों से ली। किसानों से जमीन लेते समय उसने एक मॉडल पेश किया कि भाई आप हमें जमीन दीजिए, इतना जमीन आप देंगे तो उसका एक निश्चित अनुपात डेवलप्ड प्लॉट के रूप में आपको दे दिया जाएगा। यानी कि सारी जमीन ही आप खत्म हो जाएगी, आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी ने 1 एकड़ जमीन दे दी तो ठीक है उसका 15% हम आपको डेवलप्ड प्लॉट देंगे। डेवलप्ड प्लॉट मतलब राजधानी में अगर आपको डेवलप्ड प्लॉट मिलता है तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा आपको होगी। तो इस तरीके से खासकर जो लैंड एक्विजिशन के लिए जो संकट पैदा हो रहा था देश में, इसने उसके लिए मॉडल का काम किया कि किसानों से इस तरीके से भी भूमि अधिग्रहित की जा सकती है। अब जब अमरावती से अब राजधानी शिफ्ट करने की बात आ रही है तो अब इन किसानों की चिंता है, किसानों की चिंता है कि अब हमारे इन जमीन का क्या होगा। इसीलिए आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि अमरावती में सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध में विरोध भी प्रदर्शन भी हो रहे हैं। दोस्तों जहां तक यह है कि आप इसके माध्यम से रीजन का विकास कर सकेंगे, ये कोई बहुत ही आप यूं कह लीजिए कि निश्चित फार्मूला विकास का नहीं है, क्योंकि बहुत से राज्यों में अभी भी दो राजधानियां तो आप मान लीजिए कि कर ही सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में है राजधानी भोपाल है लेकिन न्यायिक राजधानी जबलपुर है, छत्तीसगढ़ में जो राजधानी रायपुर है लेकिन जो उच्च न्यायालय है वो आपके बिलासपुर में है, उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि जो राजधानी है वो उत्तर प्रदेश की लखनऊ है लेकिन उसके जो उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद में है, तो अब बहुत से राज्यों में ऐसा हो रहा है, तो इसकी कोई गारंटी तो नहीं है। और इससे पहले भी अंग्रेजों के समय में इस तरह का होता था, समर कैपिटल और विंटर कैपिटल अंग्रेजों के समय में होता था। दिल्ली में राजधानी होती थी, फिर पता लगा कि गर्मी के दिनों में वो शिमला में शिफ्ट हो गया। जम्मू कश्मीर में अभी यही था, श्रीनगर और जम्मू में राजधानी हुआ करती थी। तो खासकर ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, और इसके आधार पर आप नहीं कह सकते कि वास्तव में उन सभी क्षेत्रों का विकास होगा। एक बात और भी है, देखिए जो विधायी प्रक्रिया है और जो कार्यकारी प्रक्रिया है, यानी कि एक तरफ विधानसभा एक जगह पर है और जो सरकारी दफ्तर है वो दूसरी जगह पर है ना, जिन्हें आप कार्यकारी राजधानी कह रहे हैं, तो इन दोनों में लगातार संपर्क का बना रहना बहुत जरूरी है। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि जब चाहे वो संसद चल रही हो या विधानसभाएं चल रही हों, उस समय जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो सचिवालय की, वो पूरी तरह से सदन के कामों में ही जुटी रहती, लगी रहती है। इसका मतलब यह हुआ कि जब विधानसभाएं चलेगी खासकर आंध्र प्रदेश की, तो जो पूरा का पूरा जो एग्जीक्यूटिव स्टाफ है सचिवालय का, वो शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको शिफ्ट करने का खर्चा भी लगेगा, कार्य में बाधाएं भी आएंगी, और सचिवालय का तो पूरा काम एक तरीके से रुक सा ही जाएगा। ये व्यवहारिक परेशानी उससे खड़ी हो सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ बहुत ही व्यवहारिक किस्म की बातें मैंने आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकेंद्रीकरण को लेकर के आपके सामने रखी हैं। मुझे लगता है कि मेन एग्जामिनेशन में हो सकता है कि इस पर कोई प्रश्न पूछ लिया जाए, तो इसी तथ्य को ध्यान में रख करके मैंने इस विषय को चुना है। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से एक दोस्त का नाम है अनामिका विमल, आपका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।